الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے مقصد زندگی. آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو زندگی کا بھی مقصد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اگر محض کھا لیا، پی لیا، سو گئے، اٹھ گئے اور اسی طرح زندگی گزار دی اور مر گئے، تو پھر جانور بھی اسی طرح کرتے ہیں. جانوروں کی زندگی بھی اسی طرح ہے نا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. چارہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، چرتے ہیں، پھرتے ہیں. نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، اور نہ کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہے. تو اگر کسی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی جانوروں کی طرح ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، زندگی کا مقصد بیان فرما رہا. ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان. اب اس میں سب سے پہلی چیز، مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں مخاطب کیا گیا. یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا المشرکون نہیں کہا، یا ایھا المنافقون نہیں کہا، ایمان والوں کو مخاطب کیا. اور ایمان والا کون ہے؟ بزرگان دین نے بڑی پیاری حکمت اور بہت ہی پیارا نقطہ آمنو کے متعلق بیان فرمایا. فرمایا آمنو میں چار حروف ہیں، چار، الف، میم، نون اور واو. آمنو کیا مطلب؟ ایمان والے. ایمان والے کون ہیں؟ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں، الف سے اللہ پر ایمان، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نون سے نبیوں پر ایمان، اور واؤں سے ولیوں کی عظمت پر ایمان. یہ چار چیزیں جس کے اندر ہیں وہی ایمان والا. حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی ایمان والا نہیں. اور پہلی چیز تو لازمی ہے، اللہ پر ایمان تو لازمی ہے نا، اگر نہیں ایمان والا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لازمی ہے. اللہ کو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، لیکن اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں ہے، مومن نہیں. پھر نبیوں پر ایمان، اور پھر ولیوں پر، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان سب پر ایمان اور یقین رکھنا. تو ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں، انبیاء سابقین، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں. حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں. اب ان کو مخاطب کیا گیا اور کہا اللہ سے ڈرو. اگر خشیت الہی دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے. ایک خوف، ایک ڈر انسان کے دل میں، اللہ مجھے دیکھ رہا، وہ میرے تمام احوال سے باخبر ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، اعمال و افعال و کردار، اس سب سے باخبر. अगर ये चीज पैदा हो जाए दुनिया संवर जाए, और जब दुनिया संवर गई तो आखिरत के संवरने का दारोमदार दुनिया पर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहां तुम जो कुछ बोगे वो वहीं काटोगे। जैसे फसल आप तैयार करते हैं ना, बीज जैसा डालते हैं वैसी फसल होती है। ऐसा नहीं कि आम की गुठली दबाएं और पपीते का दरख निकल आए, ऐसा कभी हुआ? या बीज कोई और सा और जो सब्जी उगी या जो भी फसल उगी वो कोई और, ये नहीं हो सकता। जैसा बीज वैसी फसल। तो फरमाए ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, यहां जैसा अमल करोगे वहां वैसी जजा मिलेगी। अगर अमल नेक है तो जजा है और अमल बद है तो सजा है। तो इसलिए इस दुनिया को दारुल अमल करार दिया गया कि इस दुनिया में अमल करो। अच्छा, पहली चीज तो बताई खशियत इलाही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, उसका खौफ उसका डर अपने दिल में पैदा करो। हक्का तुकातिही, जैसा कि डरने का हक है। फिर दूसरी चीज बताई, अच्छा इसमें इब्तिदा और इंतहा, इख्तिताम भी बता दिया और इब्तिदा भी बता दी, जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया, और ईमान वाला कहकर मुखातिब किया गया। ईमान वाला कौन है? जो इस्लाम लाए, और इस्लाम के माना ही ये हैं कि अपना सर तस्लीम खम कर देना अपने रब की बारगाह। अब हम कहते हैं ना मुसलमान हैं, मुसलमान के माना वो हैं जो हर हुक्म पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अपना सर तस्लीम खम कर दे, जो माने तस्लीम करे अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को। और इख्तिताम ये बताया वला तमूतुन्ना, ना मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर ईमान वाले होकर, यानी कोई ऐसा अमल ना कर गुजरना कि खुदा ना खास्ता बेईमान मर जाओ, क्योंकि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। कोई कितना मुत्तकी है, परहेजगार है, बहुत इबादत गुजार है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुफुर पर मरा तो इबादत कहां गई, रियाजत कहां गई, सब खत्म हो गए। मुर्तद होकर मरा इबादत खत्म, कुफुर पर मौत इबादत खत्म। इसलिए हर हाल में अल्लाह से डरते रहो, अपनी इबादत अपनी रियाजत अपने तकवे अपने परहेजगारी पर नाज मत करो, अल्लाह के करम पर नाज करो। घुमंड इबादत पर नहीं, घुमंड अल्लाह के करम पर, मौला तेरा करम है कि मैंने इबादत की, और उस इबादत को बचा कर रखो और दुआ करो कि खात्मा बिल खैर हो जाए, खात्मा बिल खैर हो जाए। अब दो चीजें तो हमें पता चल गई कि जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह की इबादत खशियत इलाही, और जिंदगी का इख्तिताम क्या है, ईमान पर सलामती के साथ मौत, ईमान पर सलामती के साथ मौत। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि चलो हमने इबादत कर ली, सारी जिंदगी इबादत की, नमाजें पढ़ी, रोजा, हज, जकात, सदकात, खैरा सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इस बात की क्या जमानत है कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा? है किसी की जमानत? कोई कहे कि हाँ बिल्कुल मेरा खात्मा ईमान पर होगा, तो यहां मैं एक बात करता हूं कि हाँ अहले सुन्नत और अहले तरीकत बबांगे दोहल कह सकते हैं कि हमारे पास जमानत मौजूद। बुजुर्गान दीन की जमानत, गौसे आजम ने फरमाया मेरा कोई मुरीद कयामत तक मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला बगैर तौबा किए नहीं मरे। ईमान पर खात्मा, ईमान की सलामती की जमानत, और ईमान पर खात्मे की जमानत ले ली गौसे आजम ने। पता चला कि बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होना ये ईमान पर खात्मे की बयन दलील है। जो भी किसी के दामन से वाबस्ता है अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे से, इंशाअल्लाह ताला ईमान पर खात्मा होगा और जन्नत में जाएगा। ईमान पर खात्मा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी नव्वर अल्लाह मनकदहू, किसी ने पूछा उनसे, حضرت ایک ایسا عمل مجھے بتائیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ فرمایا یہی سوال میرے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے کیا گیا تھا، تو جو انہوں نے جواب دیا تھا وہی میں بھی جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہی تھا، تو جو ان کا جواب تھا وہی میرا جواب، اور جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت رکھو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضور کی آل سے، اہل بیت سے محبت رکھو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو تمہیں دعوت اور تبلیغ کی ہے میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں پہنچایا، میرا صلہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم محبت کرو، بس یہی میرا صلہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دست مبارک پکڑ کر سرکار نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، و احب حازین، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، و اباہما و امہما، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہو۔ تو حضور نے تو جنت کی بشارتیں دی، تو ایمان کی سلامتی کی ضمانت اہل بیت کی محبت، ایمان کی سلامتی کی ضمانت اولیاء اکرام سے دامن سے وابستگی، اور ایمان کی سلامتی کی ضمانت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت۔ تو جب یہ محبت دل میں ہوگی انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا مرتے دم تک، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا دونوں چیزیں بتا دیں۔ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ خشیت الہی دل میں پیدا ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، جو کام کرو اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ مولا میں یہ کر رہا ہوں اس میں تیری ناراضگی تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ عمل مجھ سے سرزد ہو جائے اور تم اس سے ناراض ہو جائے۔ جب خوف دل میں ہوگا وہ خوف تمہیں کوئی غلط کام کرنے نہیں دے گا۔ اچھا، خوف بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، خوف بڑی عجیب چیز ہے۔ استاد کا خوف شاگرد کو سبق یاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، ڈر ہے نا، خوف مار لگے گی۔ والدین کا خوف صحیح تربیت دلاتا ہے، پیر و مرشد کا خوف وظائف کی پابندی کراتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا، ہے نا۔ اگر خوف ہو، اور نہ ہو تو پھر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیا وہ بھول گئے تھے نہیں پڑھا، شادی میں چلے گئے تھے نہیں پڑھا، ادھر چلے گئے تھے نہیں پڑھا۔ لیکن خوف ہوگا کہ پوچھا جائے گا، اب جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بولنا پڑے گا، تو اسی لیے پہلے سے پڑھ لو تاکہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب خوف کی مثال آپ یہ سمجھیں، آپ سفر سے تھکے ہوئے گئے، شاید میں نے پہلے بھی یہ مثال بیان کی ہے، الحمدللہ 150 نشستیں مکمل ہو چکی، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ محنت ہمارے نعمان رحمانی اشرفی صاحب نے کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان 150 نشستوں میں بہت سی مثالیں ایسی گزری جو ہم نے دوبارہ بھی بیان کی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، ویسے آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، ایک نشست میں جو بیان کیا جائے اگلی نشست میں صاف ہوتا۔ خیر بہرحال، آپ سفر سے تھکے ہوئے کسی جگہ پہنچے، ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، خوف کی مثال، یہ مثال آپ سمجھ جائیں گے، خوف کا مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آدمی سفر کر کے جاتا، بہت زیادہ تھکا ہوا، نیند کا خمار، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اپنے دوست کے یہاں پہنچے، انہوں نے آپ کے لیے بہترین بستر تیار رکھا کہ آپ دور سے سفر سے آئے تھکے ہوئے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ اس پہ سو جائیے۔ اے سی بھی کھول دیا، پنکھا بھی چلا دیا، گرمی ہے، کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ हजरत आप आराम कीजिए, बहुत दूर से थके हुए आ रहे हैं। लेकिन जब कमरे से जाने लगा तो उसने कहा एक बात याद रखिएगा, ये जो सुराख है ना, इसमें से कभी कभी सांप निकल आता है, कभी कभी निकल आता है, ऐसे नहीं कि रोजाना, कभी कभी। आप आराम से सो जाइए। चला गया। अब आप सोएंगे या नहीं सोएंगे? अब आंखों में नींद है, खुमार है, थके हुए लेटे हुए देख रहे हैं कि निकल तो नहीं रहा, गए कहीं निकल तो नहीं आया, एक खौफ है ना, नींद गायब, सारी थकन एक तरफ, अब जान की फिक्र है, ऐसा नहीं कि मैं सो गया और निकल आया तब, क्या वैसे ही कह के चला गया हो। लेकिन उस खौफ ने सोने नहीं दिया, उस खौफ ने सोने नहीं दिया। ये है खौफ की बात कि अगर खशियत इलाही दिल में पैदा हो जाए तो इंसान कोई गलत काम ना करे, मेरा रब मुझे देख रहा, मुझे जवाबदेह होना है। तो फिर ये सारी चीजें, शैतान अपने फितना सामानियों के साथ कितना ही हमला करे लेकिन खशियत इलाही उसे भटकने नहीं देगी। ये खौफ दिल में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा, सब चीजें हटा देगा और सिराते मुस्तकीम पर चलता रहे। ये है खौफ की मिसाल। अच्छा, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो जागते हैं, क्या खौफ से जागते हैं? रातों को जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिक्र अस्कार में मसरूफ है, पूरी पूरी रात जागकर इबादत में गुजार दी। एक चीज है खौफ और एक चीज है मोहब्बत। खौफ सोने नहीं देता और मोहब्बत भी सोने नहीं देती, मोहब्बत भी सोने नहीं देती। हजरत इब्राहिम अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, देखा कि एक औरत दुआ कर रही है, मौला मुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है मेरी ये मुराद पूरी कर दे। अल्फाज देखिए, जो तुझको मेरे साथ है, ये नहीं कह रही मुझे तेरे साथ है, मौला तुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है मेरी मुराद पूरी कर दे। आप तवाफ करते करते ठहर गए, उसके पास गए, ये क्या जुमला कह रही है तू? उसने कहा क्या हुआ? तुझे ये कहना चाहिए मौला तुझे उस मोहब्बत की कसम जो मुझको तेरे साथ है। अरे खुद महबूब बन रही है, रब को मुहिब बना रही है, खुद मुहिब बन, रब को महबूब बना, तुझे ये कहना चाहिए मौला उस मोहब्बत की कसम जो मुझको तेरे साथ है। उसने कहा इब्राहिम तू अपना तवाफ करता रहे, तुझे क्या पता ये मुहिब महबूब तालिब मतलूब की बात। इब्राहिम 40 साल हो गए मेरी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई, 40 साल हो गए, सारी दुनिया सो रही होती है, महवे ख्वाब होती है, मेरा रब आकर मुझे उठा लेता है, अपनी इबादत में लगा लेता है, ये मेरी मोहब्बत नहीं, ये उसकी मोहब्बत का। औरों को क्यों नहीं उठाया, दूसरों को क्यों नहीं उठाया, ये मेरी मोहब्बत नहीं, मैं क्या उससे मोहब्बत करूं, मैं कैसे मोहब्बत कर सकती हूं, ये उसकी मोहब्बत का नतीजा है और उसकी तौफीक है कि मुझे उठा लेता है, अपनी इबादत में लगा लेता है। मुहिब महबूब तालिब और मतलूब की बात, कहने का मकसद यह है मोहब्बत सोने नहीं देती, खौफ सोने नहीं देता। जब मोहब्बत हो जाए ना शदीद, और जिससे मोहब्बत हो उससे मुलाकात हो, तो उस वक्त आदमी सोएगा नहीं सोएगा, दिन हो रात हो दोपहर हो शाम हो सुबह हो, जब मुलाकात का वक्त होगा नींद भी होगी तो गायब हो जाएगी। तो ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन रब से मुलाकात करते हैं, इनकी नींदें गायब हो जाती, इनमें उस मुलाकात में जो कैफ व सुरूर हासिल होता है वो फिर किसी और चीज में हासिल नहीं होता। इसीलिए ये सारी सारी रात जागकर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। तो कुरान ने कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरना मगर मुसलमान। एक और तरीका है ईमान पर खात्मे का, एक तो बताया ना अहले बैत से मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है, जमानत है, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। दूसरी चीज है दुरूद पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा उसका खात्मा ईमान पर हो। रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने देखा एक नौजवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा और तवाफ के दौरान दुरूद पाक पढ़ रहा। उन्होंने जाकर पूछा तुम इसमें दुरूद शरीफ क्यों पढ़ रहे? उसने कहा इसकी एक वजह है, मैं अपने वालिद के साथ हज करने के लिए निकला, रास्ते में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल हुआ तो ऐसी जगह कि जहां मेरे और उनके अलावा कोई नहीं था, एक सहरा था, रेगिस्तान, काफलों की सूरत में लोग जाते थे। फिर मैंने देखा कि उनका चेहरा सियाह हो गया, वालिद का। तो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि पता नहीं इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की, कोई ऐसा गुनाह हो गया कि चेहरा बिल्कुल सियाह हो गया। अब मैं जब इनकी लाश को लेकर काफले वालों तक पहुंचूंगा तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी कि वालिद का चेहरा सियाह हो गया, मैं उनको क्या बताऊंगा। कहता है कि अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे नींद आ गई, जैसे ऊंग आ जाती है ना, और उसी नींद में मैंने देखा कि एक नूरानी सूरत वाली शख्सियत नमूदार हुई। उसने मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरा और सियाही दूर हो गई, नूर ही नूर हो गए, चेहरा रोशन हो गया, और उसके बाद वो जाने लगे। कहते कि मैं हैरान हुआ, मैंने वालिद के चेहरे को देखा कि अभी बिल्कुल सियाह था और अभी एकदम रोशन, मुनव्वर, शुआएं निकल रही है, नूर ही नूर। तो जिन्होंने दस्ते मुबारक फेरा था और जाने लगे, मैं उनके पीछे गया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा मैं तुम्हारा नबी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सरकार के कदमों पर गिर गया और उन्होंने कहा कि वजह यह है कि था तो गुनाहगार लेकिन कसरत से मुझ पर दुरूद पड़ता था, इसलिए हमने आकर इसके चेहरे को सही कर दिया। कहते उस वक्त से लेकर आज तक मेरा वजीफा दुरूद ही दुरूद, हर वक्त मैं दुरूद ही पढ़ता हूं। पता चला कि जो दुरूद पढ़ेगा उसका खात्मा भी ईमान पर होगा, और जब खात्मा बिल खैर हो जाएगा तो जन्नत नसीब हो जाए। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी का मकसद बयान फरमा दिया। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी और खशियत इलाही अपने दिल में रासिख कर लेना। जब खशियत इलाही होगी इंसान कोई भी गलत काम कभी भी किसी हाल में भी किसी वक्त भी नहीं कर सकेगा। और अंजाम बयान कर दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अगर तुम मरना तो मुसलमान ही मरना। अब आप कहेंगे मरना हमारे बस में थोड़ी है। हाँ, मरना तुम्हारे बस में नहीं है लेकिन इस्लाम पर मरना तुम्हारे बस में है। कैसे? ऐसी निस्बतें कायम रखो और ऐसे नफूस कुदसिया से मोहब्बत रखो कि खुद ब खुद खात्मा ईमान पर हो जाए। जिन्होंने तुम्हारे ईमान की जमानत ले ली, जिन्होंने जन्नत की जमानत ले ली, उनसे राबता कायम रखो और उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। एक सवाल गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने किसी नशिस्त में यह बयान किया था कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता होना दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दलील है, और जो इनके दामन से वाबस्ता होता है इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में जाएगा। यह हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में बयान किया था, और ये भी बताया था कि ये अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल बंदे हैं, बरगुजीदा बंदे हैं, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन। एक साहब ने वो सुनकर फोन पर सवाल किया, और ये सवाल जो है वो कम इल्मी की बिना पर किया गया है। अगर उन्हें इल्म होता और बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की होती तो कभी भी ऐसा सवाल ना करते। सवाल उन्होंने ये किया कि ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो आप कहते हैं कि ये मकबूल हैं, तो इस बात की क्या दलील है कि इनके आमाल कबूल हो चुके हैं, एक ये। और दूसरा उन्होंने कहा कि जन्नत, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, ये तो अल्लाह ताला जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, आपने कैसे कह दिया कि जन्नत। और दूसरी बात ये कही कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिनको जन्नत की बशारत दी उनके नाम बता दिए, यानी अशराए मुबशरा की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो 10 सहाबा जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। अब उनके सवाल के दो हिस्से हो गए। एक तो ये है कि जन्नत सिर्फ उनको मिलेगी जिनको हुजूर ने बशारत दी। उनके कहने का मकसद ये है जो उन्होंने सवाल किया कि हुजूर ने तो उनके नाम बता दिए, आप कैसे कह रहे हैं कि बुजुर्गान दीन जन्नती हैं या इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ तो जन्नत मिल जाएगी। और दूसरा सवाल ये है कि कैसे पता चले कि इनके आमाल कबूल हो चुके। कम इल्मी की बिना पर सवाल किया गया। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये लोग ये समझते हैं जिन्होंने ये सवाल किया वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वो 10 सहाबा जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी सिर्फ वही जन्नती हैं। अरे हमारा ईमान है जितने सहाबा हैं सारे जन्नती। अरे उन सहाबा की तो शान ये है कि जो नालेन पाक से लगे हुए जर्रे हम पर पड़ जाएं तो हम जन्नती हो जाएं। जिसने हुजूर की जियारत की वो जन्नती है, तो उन्होंने तो दिन रात हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत की। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा को ही बशारत नहीं दी, हुजूर ने दीगर सहाबा को भी बशारत दी, जन्नत की जमानत दी है, जन्नत में अपना साथ अता फरमाया। हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मौजूद है, सरकार को वजू करा रहे हैं। सलमा शेता असालो का मुराफिकत कल जन्ना, हुजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है, हुजूर जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूं, फरमाया जाओ अता कर दी, तो उनको जन्नत की बशारत दी। इसी तरह दीगर मवाकों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। फिर फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में दाखिल हो सारे जन्नती हो गए। जिसके जनाजे पर 3 सफे बन जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जिसका मफहूम यह है कि जिसके जनाजे पर 3 सफे बन जाएं और वो मुसलमान उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ कर दें वो जन्नती। हर 40 पर एक जन्नती। जिसने हज किया उसके लिए जन्नत की बशारत, जिसने कुरान हिफ्ज किया उसके लिए जन्नत की बशारत, जो आलिम दीन है उसके लिए जन्नत की बशारत, और सिर्फ उसके लिए नहीं वो औरों को भी लेके जा रहा। फरमाया हाफिज कुरान अपने खानदान के ऐसे 10 अफराद की शफात करेगा जिनके आमाल की वजह से उन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी हो। तो जब हाफिज कुरान की शफात से दूसरे जन्नत में जा रहे हैं वो खुद नहीं जाएगा, वो खुद नहीं जाएगा, और ये तो हाफिज कुरान है, आलिम दीन शफात करेगा। हदीस शरीफ मौजूद है जिसका मफहूम ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत में लोग कहेंगे उलमा से हमने आपको पानी पिलाया था, वो कहेगा हमने आपको वजू कराया था, वो कहेगा हमने आपकी ये खिदमत की थी, फिर वो आलिम दीन अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा, उसकी शफात कबूल की जाएगी। उलमा शफात करेंगे, अंबिया शफात करेंगे, औलिया शफात करेंगे, हाफिज कुरान शफात करेगा। अरे ये सारे शफात कर रहे हैं, जन्नत में पहुंचा रहे हैं, और ये समझना सिर्फ वो 10 सहाबा ही जन्नती हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। ला इल्मी की बात है, कम इल्मी की बात है। अगर बुजुर्गों की सोहबत उठाई होती, उलमा की सोहबत उठाई होती तो कभी ये सवाल नहीं करते। दूसरी बात, इनका अमल मकबूल है ये कैसे पता चला? इसके कई जवाब हैं। एक जवाब तो ये है, मसलन उनका इशारा हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ। दाता साहब के विसाल को 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया। 1000 साल मामूली बात नहीं है। 2-3 दिन में लोग भूल जाते हैं, 1 साल में भूल जाते हैं, 10 साल में, 5 साल में भूल जाते हैं। जिसके विसाल को 1000 साल से ज्यादा अरसा हो जाए और रात के किसी हिस्से में मजारे मुबारक पर जाओ तिलावत कुरान हो रही, तिलावत कुरान हो रही है, इस बात की दलील है कि इनके अमल कबूल हो चुके हैं, ये खुद बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल है। जो उनकी बारगाह में पहुंच जाए वो मकबूल है, तो ये बुजुर्गान दिन क्यों नहीं मकबूल होंगे? इनको दलीलें चाहिए, दलील दो। आओ एक और दलील दें। मुस्लिम शरीफ की हदीस आप हजरात सुन चुके हैं, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर दूं। बनी इसराइल का एक शख्स जिसने 99 आदमियों को कत्ल किया और फिर दिल में ख्याल हुआ कि मैं तौबा करूं अल्लाह की बारगाह में, गया एक राहिब के पास, किसी ने बताया कि जाओ वहां जाके तौबा कर लो। उससे जाकर कहा राहिब साहब मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, अब मैं चाहता हूं कोई सूरत ऐसी हो कि मेरी तौबा कबूल हो जाए। उसने कहा 99 आदमियों को, भाग यहां से, तेरी तौबा कबूल नहीं है। अरे एक दो को कर किया होता, तीन चार को, 99 को कत्ल करके और अब तौबा करने के लिए आ रहा है। तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं। बड़ा गुस्सा आया इसको। अच्छा तौबा कबूल नहीं? कहा नहीं। उसने उसको पकड़ा और उसको भी 100 की गिनती पूरी कर दो। देखिए जब 99 में छुटकारा नहीं है तो 100 पूरे ही कर दो, एक ही तो रह गया। उस राहिब को भी पकड़ा और उसको भी पहुंचा दिया। फिर बाहर निकला, लेकिन फिर दिल में ख्याल है कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो मुझे तौबा का तरीका बता दे। लोगों ने कहा ऐसा करो, फलां बस्ती में अल्लाह का एक बंदा रहता, वहां चले जाओ, वो तुम्हें जरूर तौबा का तरीका बता देगा। अब ये चला वहां से, यानी यह हदीस शरीफ है, ये कोई रिवायत नहीं है, वैसी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते वो चला और जब चलते चलते दरमियान में पहुंचा, यानी अभी उस वली तक पहुंचा नहीं था, मलकुल मौत आ गए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज कर, अपनी ड्यूटी के बड़े पाबंद हैं वो, कोई ड्यूटी में देर कर दे वो देर नहीं करते, एक मिनट इधर से उधर नहीं। जिसका जहां पर जो वक्त जो लम्हा लिखा है उसी वक्त आकर रूह कब्ज कर ले, इतने पाबंद। रूह निकल गई और जब रूह लेकर जाने लगे तो जन्नत और जहन्नुम के फरिश्ते आ गए। जहन्नुम के फरिश्ते कहते हैं हम इसकी रूह लेके जाएंगे, क्यों? ये जहन्नुम ही है, 100 आदमियों को कत्ल कर चुका है। और जन्नत के फरिश्ते कहते हैं नहीं हम लेकर जाएंगे, क्यों? कत्ल तो कर चुका है लेकिन तौबा की नियत से जा रहा था, तौबा की नियत थी, अगर मौका मिलता तो तौबा कर लेता, लिहाजा ये जन्नती है। अब दोनों में लड़ाई हो। जहन्नुम के फरिश्ते कहते हैं हम लेके जाएंगे, जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हम लेके। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा, जाओ इनका फैसला करा दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, क्या मसला है? उन्होंने कहा भाई ये मसला है, 100 आदमियों को कत्ल किया है तो जहन्नुम ही है, हम इसको जहन्नुम में लेके जाएंगे इसकी रूह को। जन्नत के फरिश्तों ने कहा नहीं, कत्ल तो किया है लेकिन तौबा की नियत से जा रहा था, तौबा तो कबूल होगी जाहिर, अगर मौका मिलता तो तौबा कर लेता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, फासले को नाप लो, तौबा वाले घर से करीब है तो जन्नती है और अगर दूर है तो जहन्नुम। अब कदमों को नापो, फासले को नापो, और वो ऐसी जगह मरा था कि तौबा वाले घर से दूर था, जिस तरफ तौबा के लिए जा रहा था अल्लाह के वली की तरफ वो फासला ज्यादा था। जब फरिश्ते नापने लगे, खालिक़े कायनात की रहमत जोश में आई, मेरा बंदा तौबा की नियत से जा रहा था, जमीन अपने फासले को कम कर दे ताकि मेरा बंदा जन्नत में चले। जमीन ने अपने फासले को कम कर लिया और जब नापा गया तौबा वाले घर से करीब था, अल्लाह के वली के दर से करीब था, जन्नत में चला गया। गौर करो, बनी इसराइल का शख्स गुनाहगार, 100 आदमियों को कत्ल करने वाला, और बनी इसराइल के वली के दर से करीब होने की वजह से जन्नत में चला गया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वली के दर से करीब होने वाला कैसे जहन्नुम में चला गया? यहीं से पता चल गया कि इनके दामन से वाबस्ता होना जन्नत की जमानत है, ईमान पर खात्मे की जमानत है। जो औली अल्लाह के दामन से वाबस्ता है इंशाअल्लाह ताला उसका ईमान पर खात्मा होगा, और जब ईमान पर खात्मा होगा, खात्मा बिलखैर हो गया, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। तो उन्होंने जो सवाल किया हम उनको कुछ नहीं कहते, इसलिए कि वो ला इल्मी की वजह से ये सवाल हुआ। तो ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, इनके आमाल अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हैं कि जिसके लिए ये दुआ कर दे वो भी मकबूल हो जाए। कितने वाकयात हैं, ये तो बुजुर्गान दीन के बारे में कह रहे हैं, अरे उनकी बारगाह में जो हाजिर हो जाए वो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए, इसलिए कि ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम अता फरमाया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइब हैं, अंबिया इकराम के नाइब हैं। नबुवत का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन विलायत का सिलसिला जारी है और कयामत तक जारी रहे। इनका पैगाम वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम था। इनकी महफिल में आना ये इसी तरह है कि जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में आना। तो ये कहना कि इस बात की क्या दलील है कि इनके आमान कबूल हो गए, سب سے بڑی بیان دلیل یہی ہے کہ ہزار سال وصال کو ہو چکے آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے، آج بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دو تو قلب کو سکون محسوس ہوتا، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، روحانیت میں جلا پیدا ہوتی ہے، اور ان کے نام لے کر اور ان کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت بینات میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اور زندگی کا اختتام جو صحیح ہونا چاہیے اس کا طریقہ بتا دیا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اسلام پر موت ہوئی، مسلمان مرا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری لیکن خدا نہ خواستہ کفر پر موت ہوئی، پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس دنیا میں ہم نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے، کامیاب ہو چکے، درجات و مراتب اور منزلیں یہ پا چکے. جو جس راستے سے گزر چکا ہے وہی آپ کو گزار سکتا ہے، اور جو نہیں گزر چکا وہ کیسے گزارے. انہوں نے راہ سلوک طے کی، انہوں نے عبادت و ریاضت مجاہدہ کیا، مکاشفہ کیا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کی اور پھر ایک بلند مقام پر پہنچے. تو جب ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے نشیب و فراز سے ہمیں آگاہ فرماتے. بزرگان دین اولیاء کاملین. اب ایک آدھ عام آدمی ہے جو کہیں مرید نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے شیطان کسی طرح اسے بہکا دے، لیکن اگر وہ کسی کے دامن سے وابستہ ہے تو شیطان جب بھی اس کو بہکائے گا اس کا پیر آ کر اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو بچا لے گا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نشاندہی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی موت اس کی ایمان پر ہوگی، یہ اس بات کی ضمانت. تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس سوال کے جواب میں بہت ساری دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.